जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोही निरात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहते, बाबा संग आत्मा खिल जाते। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा के याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे।
आम ही बिगड़ लो तुम ही बिगड़ाना, संत कह रहा है कि हम बिगड़ गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। सदगुरु चा संगे शिष्य बिगड़ला, शिष्य बिगड़ला सदगुरु सा झाला। सदगुरु के संग में शिष्य बिगड़ गया और बिगड़कर सदगुरु जैसा हो गया, तुम भी बिगड़ो। परिसाचा संगे लोह बिगड़ ले, लोह बिगड़ ले सुवर्ण चीज हाले। पारस के संग में लोहा बिगड़ गया और लोहा बिगड़कर स्वर्ण बन गया। सागराचा संगे नदी बिगड़ ली, नदी बिगड़ ली सागर ची झाली। सागर के संग में नदी बिगड़ गई और बिगड़कर स्वयं ही सागर बन गई। संघाचिया संगे आम ही बिगड़ लो संग रूप झालो। सत्संग में हम बिगड़ गए, संक्रमित हो गए और हम भी संघ रूप बन गए। दोराचा संगे फूले बिगड़ ली दोराची झाली। धागे के संग में फूल बिगड़ गए और फूल बिगड़कर उस धागा में एक हो गए। कृष्णा संगे गोपी बिगड़ ली, कृष्ण के साथ गोपी बिगड़ गई। गोपी बिगड़ ली कृष्ण चीज आली। विठ्ठलाचा संगे तुका बिगड़ला। तुकरम लिख रहे हैं कि विठ्ठल के साथ मैं बिगड़ गया, तुका बिगड़ला विठ्ठल ची झाला। एक हो जाना, समा जाना, विलय, घुल जाना, मिल जाना, लीन हो जाना, ये सारे शब्द हैं जो आज बाबा ने प्रयोग किए हैं। जैसे नदी क्या हो जाती है, सागर में समा जाती है। समा जाना, लीन हो जाना, एक रूप हो जाना, घुल जाना, मिल जाना, एकाकार हो जाना, यूनियन, यह परम अवस्था है चेतना की। और यही अवस्था किसकी है? महारथी बच्चों की। और कब है? अमृत वेला। वो बैठते हैं और खो जाते हैं और एक प्रगाढ़ मिलन का अनुभव करते हैं, अलौकिक विलय, अलौकिक विलय का अनुभव। डूब जाना, खो जाना, और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं। एक वो है जो नदी खो गई सागर में, और दूसरे वो है जो नदी अभी राह ढूंढ रही है, जो संघर्षरत है, जो चढ़ते हैं उतरते हैं, कभी आकर्षित होते हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। संघर्ष की अवस्था है, प्रेम अपूर्ण है। योग मेहनत है, कष्ट है, लड़ाई है, युद्ध है, सहज नहीं है, मुश्किल है, मेहनत है। तो वो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं बाबा के महावाक्य। प्यार में क्या हो जाओ? लवलीन हो जाओ। अमृत वेले महारथी बच्चे और सब बच्चे जब रू रिहान करते हैं तो महारथियों की रू रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रू रिहान में क्या अंतर होता है? यह जो गायन है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। एक हो जाना, यूनियन। यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है? क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है लेकिन डैश लव लीन। एक शब्द है लीन, एक शब्द है लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? यह तो जैसे एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप में ले लिया है। यह जो गायन है कि वह एक दूसरे में समा कर एक हो गए, यह है डैश का मिलन, महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप बन गए, ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों का होगा। सुबह उठे, बैठे और लीन हो गए, बैठे और समा गए, बैठे और खो गए, बैठे और डूब गए, नदी सागर में मिल गई। सद्गुरु संगे शिष्य बिगड़ ले, शिष्य बिगड़ ले सद्गुरु चीता ले। सद्गुरु के हो गए वो, सद्गुरु समान हो गए। कृष्णा संगे गोपी बिगड़ ली, कृष्ण के साथ जैसे गोपी बिगड़ गई, और बिगड़ गई अर्थात कृष्ण समान हो गई। आम ही बिगड़ लो तुम ही बिगड़ाना। क्या लिख रहा है संत कि हम तो बिगड़ गए, अब तुम्हारी बारी है। हम तो पागल हो ही गए हैं, तुम कब पागल होंगे? ये विलय होने की, ये घुल जाने की विधि क्या है? अब प्रश्न ये है चिंतन का, हाउ टू मर्ज इन गॉड। छलांग मार दो और तीन स्टेप्स है। पहली स्टेप, मैं कौन? दूसरा, मैं किसका? और मैं क्या कर रहा हूं? मिलन की तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था, ये शरीर नहीं आत्मा हूं। और फिर किस में मिल रही हूं? उस परमात्मा में। मैं किसका हूं? इस दुनिया का नहीं, मैं उसका हूं जो सच्चा रिश्तेदार है, बाकी सब माया के मेहमान है, माया के रिश्तेदार है सब। ये एक ही असली वाला है, बाकी सब नकली रिश्तेदार है। तीसरी विधि, मैं क्या कर रहा हूं? तो मिलन की तीन विधियां, समाने की तीन विधियां, मैं कौन? जैसा वो है वैसा मैं हूं। दूसरा, मैं किसका? मैं उसका, उसके कार्य के लिए हूं। संसार के लिए मैं नहीं हूं, मैं उसके कार्य के लिए हूं। तीसरा, मैं क्या कर रहा हूं? जहां अहंकार विलय हो जाए, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, वो करा रहा है, कठपुतली है, यंत्र है, खिलौने हैं, नियंत्रण उसके हाथ में है। तो ये मिलन किसका हुआ? महारथियों का। बाकी और जो बच्चे हैं वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, संघर्षरत है, चाहते हैं हमारी भी बहुत ऊंची अवस्था हो जाए, पर हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि पात्र में और भी बहुत कुछ भरा हुआ है। दिलाराम किस दिल में ठहरता है? जो स्वच्छ हो। युद्ध करते करते समय ही समाप्त हो जाता है। क्या करते रहते हैं ये बच्चे? युद्ध, योद्धे हैं। लेकिन महारथी बैठे और समाए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। क्या सुना? बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जीसस क्राइस्ट गुजरता है यरूशलेम के एक गली में, और वहां फैरिसीज है, वहां वो पंडित लोग हैं, वहां वो यहूदी लोग हैं। वो यहूदी कब से राज कर रहे हैं वहां पर? वो पंडित लोग जो लोगों से अच्छी अच्छी दक्षिणा लेते हैं और कहते हैं हम तुमको भगवान से मिला देंगे। तो जहां पंडितों का राज्य है, फैरिसीज और वहाँ पर अचानक एक व्यक्ति आ जाता है और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, कितनी पीड़ा हो रही होगी। अभी तक हमारा राज चलता था, अब ये कौन नया आ गया और लोग सब उसकी तरफ जा रहे हैं और वो चमत्कार कर रहा है। वो यहूदी ईसा मसीह को घेरते हैं और कहते हैं, तुम कब तक हमको अंधेरों में रखोगे, बताओ तुम कौन हो, क्या तुम वास्तव में मसीहा हो? वो कहता है, हाँ मैं हूं, ये लिखा हुआ है। प्रमाण क्या है? मेरे कर्म ही मेरा प्रमाण है। और तब बाइबल में एक स्टेटमेंट है, चैप्टर 10 जॉन वर्स 30, माय फादर एंड आई आर वन, मेरा पिता और मैं एक हूं। और वो सारे लोग पत्थर उठाकर उसको मारने लगते हैं, धर्मग्लानी, ब्लास्फेमी, अपने आप को भगवान कह रहे हो, माय फादर एंड आई आर वन, बाप और बच्चा एक ही धड़कन में धड़क रहे, आत्मा और परमात्मा एक ही धड़कन में धड़क रहे। ये चेतना की अवस्था है। वो लोग उसे समझ नहीं पाए और इसी एक बात के लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि उसने क्या घोषणा कर दी, माय फादर एंड आई आर वन, मेरा पिता और मैं एक ही हूं। चेतना की इतनी ऊंची अवस्था हो गई है कि दो चेतनाएं अब दो नहीं रही, एक हो गई। बाबा ने क्या कहा, महारथियों का मिलन कैसा है, बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे, जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण, मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना, जैसे वो है वैसे मैं हूं, अब मैं स्वरूप नहीं मैं सागर हूं, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, जो जो। एक मुरली में एक छोटा सा वाक्य था, सबको पता है, बाप के टाइटल बच्चों के डैश समान, बाप के टाइटल बच्चों के समान। कल भी कहा था, प्रेम आत्मा का स्वभाव है, समान आत्मा का तेज है, सम्मान आत्मा की सुगंध है। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव होता है। कृष्ण गाती गीती, कृष्ण ध्याती चित्ती, एची कृष्ण धाली कृष्ण ध्याने, कृष्ण का स्वरूप गाते गाते, कृष्ण का ध्यान करते करते वो गोपिया भी क्या बन गई, स्वयं ही कृष्ण बन गई। उस साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप में खोए रहते हैं तो स्वरूप भी समान हो गया, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान तो गुण भी बाप समान। धृतराष्ट्र के सामने संजय वर्णन कर रहा है 11वां अध्याय गीता कि श्री कृष्ण अपना विराट रूप कृष्ण को अर्जुन को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पर एक बात आश्चर्य की है, ये सब कहते हुए भी संपूर्ण निरंकारी भाव है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, सबका आदि बीज मैं हूं, अहम आदिश्य मध्यश्य, सब कुछ मुझ में समाया हुआ है, ये सारी सृष्टि सब कुछ मुझ में देख। परंतु संजय कहता है, यह राजन, ये सब कहते हुए भी पता नहीं ये क्या है, निरंकारी अवस्था है। नहीं तो जब ऐसा कोई कहता है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो कैसा कहता है, एकदम झलकता है कि ये कितना मैं से भरा हुआ है। परंतु जब भगवान कहता है मैं, उसमें क्या है? निरंकारिता समाई हुई है। मैं आत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानाम, सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। जैसे डैश डैश में समाकर डैश स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जैसे नदी किसमें समा रही है? सागर में समा रही है। देखा है किसी ने ये दृश्य स्थूल में? नदी और सागर सबने देखा है, नदी सागर में समाते हुए स्थूल में देखा होगा ना? नहीं देखा? क्यों, नेपाल में नदियां नहीं थी क्या? ये अच्छा, सागर नहीं है। जहां नदी और सागर संगम हो रहा है, नदी को कितना डर लगता है। नदी जब पहुंच जाती है बस अब सागर में खोने ही वाली है, तब वो बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो नदी नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका इंडिविजुअलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका नाम नदी नहीं रहेगा, उसके दो किनारे भी नहीं रहेंगे। अब व्यक्तित्व ही विलीन होने वाला है, व्यक्तित्व ही खोने वाला है। तब उसको बहुत भयभीत, भय से भर जाती है। और भय कब उसका समाप्त हो जाता है? जब उसे पता चलता है बहुत से बेहद में चली गई। अब वो नदी नहीं रही, परंतु क्या बन गई? सागर ही बन गई। जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, बाबा ने स्वयं के लिए बहुत सारी उपमाएं दी है, उसमें सबसे पावरफुल जो उपमा है वो कौन सी है? सागर। दूसरी है सूर्य। ये सारे क्या है? इस धरती के, इस संसार के, साकारी वतन के। तीसरा ज्योति, तीसरा ज्योति, पांचवा बिंदु, भगवान के सात उपमाएं हैं। पहली उपमा सागर, दूसरी उपमा मैं सूर्य हूं, तीसरी उपमा ज्योति, चौथी उपमा डॉट। वो ज्योति है, जैसे ज्योति होती है वैसी ज्योति हूं। अगली उपमा डॉट, पांचवा उपमा, छठवीं उपमा बीज, सीड, मैं इस सृष्टि का चैतन्य बीज हूं। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही अंत हूं, मुझ में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए अमृत वेला सब कुछ गिराकर केवल उस बीज पर एकाग्र हो जाना। अधिक से अधिक अभ्यास कौन सा करना है? बीज रूप स्थिति का। पर वो इतना सूक्ष्म है और हमारा स्थूल मन बीज में टिक नहीं पाता, इसलिए चालू करो श्वास को देखने से, चालू करो बॉडी स्कैनिंग से, चालू करो आत्माभिमानी स्थिति से, चालू करो सूक्ष्म वतन में भक्ति से, और फिर पहुंचो परम धाम। तब तक मन शार्प हो जाता है, क्योंकि परम धाम की स्थिति समाधि की स्थिति, और समाधि के लिए एकाग्रता चाहिए। सीधा कोई कहे मैं, हाँ महारथियों का वो हो सकता है, बैठे और खो गए, परंतु पहले तो इस संसार की स्मृतियों से हटना, इसके लिए गीत मदद करते हैं थोड़ा उधर से, इसलिए वो लाइट बहुत मदद करता है, इसलिए संगठन मदद है, इसलिए ट्रांसलेट मदद करता है। पर ये सब नखिया है, और बैसाखी से चल तो सकते हैं परंतु दौड़ नहीं सकते। क्लचेस के दौड़ सकते हो क्या? चल सकते हो, पर ये आधार है, शुरुआत में ये सब चाहिए, और फिर पहुंचो परम धाम। बीज रूप एक बिंदु केवल एक सीड, एक बीज, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सातवां, स्वीट का पहाड़, माउंटेन। तो भगवान क्या क्या है? ओशन, सन, सीड, ज्योति और एक स्टार। स्टार, जैसे तुम स्टार हो मैं भी स्टार हूं। अगला डॉट, बिंदु। अगला बीज और माउंटेन, आठ हो गए, और भी बहुत हो सकते हैं पर ये मुख्य है। और इन सब में वो जो पहले तीन है, सागर, सूर्य, बीज, और इन तीन में से भी अगर दो को चुनना है तो सागर और सूर्य, और उन दोनों में से एक को चुनना है तो वो सागर है, जो सागर के तट पर रहते हैं। वो रोज जाओ, जैसे मुंबई बड़े जहाँ जो सागर जहाँ है वहाँ जाकर बैठो और देखते रहो सागर को। क्या देखोगे वहाँ बैठ के? कितना विशाल है, ना ओर ना छोर। मुंबई की चौपाटी में गए, देखा वहाँ बैठ के कितना दूर दूर तक सागर ही सागर, सागर ही सागर, सागर ही सागर। उसको देखते देखते विराट का अनुभव होता है, समा जाने का अनुभव होता है। और माउंट अबू वालों के लिए हमारा नक्की ही हमारा सागर है। तो सागर के पास जाना है, सागर से दोस्ती करनी है। बहुत हाई प्राणिक फील्ड होती है वहां पर, प्राणिक एनर्जी बहुत हाई होती है। एक होता है नदी में स्नान करना, एक होता है कुएं में स्नान करना, और कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं तैरते, स्नान नहीं तैरना, सॉरी, किसमें तैरते हैं? सागर में। वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लहरों के साथ खेलते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है? होता है, पूछ रहे हैं प्रश्न। कुछ कहा नहीं जा सकता, संदिग्ध है, डाउट है। एक व्यक्ति चट्टान के पास गुजर रहा था और अचानक पैर फिसलता है और वो संपूर्ण नास्तिक है। इतना नास्तिक, इतना नास्तिक कि भगवान के खिलाफ ही है। परंतु जैसे नीचे गिरता है, चट्टान की दरार से एक डाली है उसको पकड़ लेता है, नीचे देखता है नुकीले पत्थर और बहुत बड़ी खाई। अब गिरा की सोचता है, अब खोने को तो कुछ है ही नहीं, क्यों ना भगवान को याद कर लिया जाए। हे प्रभु, कहाँ हो तुम? यदि तुम मुझे आज बचा लो तो मैं तुम पर अवश्य विश्वास करूंगा, आज से ही तुम पर विश्वास करूंगा। हे प्रभु, तुम जहां पर भी हो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। विनती करता है, गिड़गिड़ाता है, हे प्रभु बस बचा लो। और वो डाली अब कमजोर होती जा रही है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु चिल्लाता है, और अचानक आकाश से गगनभेदी आवाज गूंजती है, मैं भगवान बोल रहा हूं, बोलो। वो कहता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं नास्तिक हूं पर अगर तुमने मुझे बचाया आज तो ये मेरा वादा है, तुम पर विश्वास करूंगा। इतना ही नहीं, दूसरों को तुम पर विश्वास कराने में मदद करूंगा। भगवान कहता है, मैं तुम जैसे लोगों को जानता हूं, तुम नहीं सुधरोगे। वो कहता है, नहीं प्रभु मेरी मदद करो, मैं बदल जाऊंगा। भगवान कहता है, सब ऐसे ही कहते हैं। वो कहता है, नहीं, बहस करता है, गिड़गिड़ाता है। भगवान कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बजाता हूं, डाली को छोड़ दो। वो कहता है, पागल समझ रखा है क्या? विश्वास तो है पर कैसा है? तुम जो कहोगे वो करेंगे, ये कहते तो है पर जो कहता है फिर वो करते नहीं, उसमें डाउट है। फिर इसी अमृत वेले की बुक में लास्ट में कहीं तो है, दुनिया के लोग 8 घंटे सोते हैं, तुम्हारी नींद कहाँ है ढूंढो, इधर ही है कहीं तो, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, लास्ट लास्ट में कहीं है। और वो एक दिन के पुरुषार्थ से नहीं होगा, वो तो तपस्या है, तपाना होगा इस शरीर को, इंद्रियों को, जिनको भोग की आदत, भोग वृत्ति में। ठीक है, 106 नंबर, 6 पेज लास्ट पर। तो दुनिया के लोग मीठे बच्चे, पहले मीठे बच्चे जोड़ दिया हाँ वही साकार मुरली का है। अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, पेज नंबर 106। 4 घंटे नींद बस, कर्मयोगी होना, अमृत वेली की याद अच्छा असर करती है, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है, ऐसे लगता है कि सब मरे पड़े बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। तपस्या कब होती है? इन द सिबिलेंस ऑफ नाइट। अंग्रेजी में एक शब्द है सिबिलेंस, अर्थात कौन बताएगा? सिबिलेंस, ये जो आवाज होता है ना रात के सन्नाटे में, रात की तारीखी में तपस्या की जाती है। जुगनुओं का आवाज, कीड़ों का आवाज, जब ऐसा सन्नाटा हो तब तपस्या की जाती है। यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव कराना। यह अनुभव अब डैश होना चाहिए, अविनाशी रॉन्ग, यह अनुभव अब डैश होना चाहिए, निरंतर रॉन्ग, यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। आज के 2 होमवर्क, तो आज 2 बातें देखी, एक तो महारथी का मिलन और दूसरा गैर महारथियों का मिलन, नॉन महारथियों का मिलन। एक नदी का समा जाने वाला मिलन और एक नदी जो संघर्षरत है, जो अपनी राह खोज रही है, भटकी हुई नदी। 3 काम है आज, 2 कैंडल लेनी है और दोनों को जलाना है और देखना है वो दोनों कैसे मिलते हैं प्रैक्टिकल में। ये पहला होमवर्क है, ये अनुभव करने के लिए। स्थूल जब तक नहीं देखते तब तक कुछ नहीं होता है, कितना भी सोचते रहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, कुछ नहीं होता। शमशान घाट में जाओ, खड़े हो वहां, खड़े होना चुपचाप पीछे, और वो देखो जलती हुई चिता। वो चिता सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो चिता सबसे बड़ा क्लास है। वो चिता कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं, कोई उदाहरण नहीं देती, पर सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव कराती है कैसा जल रहा है ये शरीर, कहाँ गया उसका सब कुछ, कहाँ गया वो सौंदर्य, कुछ नहीं रहा। 2 चीजों का अनुभव कराती है, एक तो शरीर नश्वर है और दूसरा जो उसमें कुछ तो था, मुख तो अभी भी है फिर भी वो बोल नहीं रहा है, आंखें अभी भी है, कान अभी भी है, नाक अभी भी है, हाथ अभी भी है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः, कुछ भी नहीं कर रहा है, जल रहा है। हमको तो इतनी सुई चुबाते हैं तो पीड़ा होती है, उसको देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा ज्ञान ही एक साथ उमड़ पड़ता है पूरी अव्यक्त वाणियों का सार। अनुभव करना है तो क्या करो, चलो शमशान मरघट की राह। उस दिन हम लोग जा रहे थे तो सुखदेव भाई को पूछ रहे थे यही रास्ता है क्या, हम अचानक मुख से निकल गया हर रास्ता मरघट की ओर ही जाता है, हर रास्ता शमशान घाट की ओर ही जाता है, कोई भी रास्ता जो हर रास्ता वहीं ले जाता है। इसके लिए शमशान घाट कहाँ होना चाहिए, वास्तव में शहर के बाहर नहीं, शहर के बीच चौराहे में, बीच में होना चाहिए, ऐसा एकदम मेन सिटी में, मेट्रो सिटी के बीच। जब ट्रैफिक रुके तो लोग देखे चिता जल रही है। नहीं होगा असर, रोज भले देखो फिर भी असर तो होता ही है, असर तो होता ही है, क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा है दर्दनाक, क्योंकि इससे मैं जुड़ा हुआ हूं। एक अंग्रेजी कवि लिखता है, व्हेन इट टॉल्स फॉर डेथ इट टॉल्स फॉर धी। जब भी तुम देखो कोई मरा है, विदेश में घंटी बजती थी चर्च में, जब भी कोई मरता है तो जब भी घंटी की आवाज सुनो, ये ना पूछो कौन मरा, सोचो मैं मरा। और कोई मरते हुए देखते हो किसी को तो दुख मत करो, क्यों? क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है, यू आर नेक्स्ट इन द क्यू, यू आर इन द क्यू, हाँ नेक्स्ट मैन। तो आज का पहला होमवर्क क्या है, दो अगरबत्तियां लेनी है, दोनों को देखना है कैसे एक हो जाती, फिर दोनों को क्या करना, एक, ये पहला काम। दूसरा काम विजुअलाइजेशन का, मैं नदी हूं, जा रही हूं द मीएंडरिंग रिवर, और किस में समा रही हूं, सागर में समा गई, ये क्या करना है, विजुअलाइज करना है। और तीसरा काम करना है दो चित्र, एक चढ़ रहा है पहाड़ और दूसरा बाबा की गोद में, एक है लगन में मगन अवस्था और दूसरी है संघर्ष वाली अवस्था। तो ये दो आज के कार्य है, आज के प्रश्न, तीन मुरलियां बाकी है 87 की केवल, तो आज एक लेंगे और फिर कल दो, ये वो मुरली है लगन मगन वाली, पीछे से चालू कर रहे। डैश आत्मा सदा तृप्त आत्मा संतुष्ट आत्मा आत्मा संपूर्णता की अति समीप आत्मा है। मुरली की डेट है 23 दिसंबर 23/12/87 की मुरली, 20 तारीख को इन 21 मुरलियों पर एग्जाम है। हाँ नहीं हुआ क्या, कि बाकी है, तीन बाकी है ना, अच्छा 18 बाकी, आज 23 ले लेते, कल जो बचे हुए दो है, तो 23/12/87। डैश आत्मा सदा तृप्त आत्मा है, कौन सी आत्मा, लॉटरी जीती वाली आत्मा, साक्षी आत्मा, निश्चय बुद्धि आत्मा, मगन आत्मा, मगन आत्मा, मगन अवस्था, सत्य है कि असत्य है बताना है, राइट और रॉन्ग। मगन आत्मा वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है, हम भी ऐसे बन सकते हैं। राइट रॉन्ग, राइट। एक प्रश्न है, निर्विघ्न बनने की के लिए तीन कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है, बहुत सारी मुरलियां हैं पर तीन मुख्य शक्तियां हैं। पहला संकल्प शक्ति, दूसरा पवित्रता की शक्ति और तीसरा योग बल। ये तीन शक्तियों से हमारे जीवन में जो भी विघ्न है हम उनको पार कर सकते हैं। विघ्न आया मतलब प्यूरिटी की कमी है, प्यूरिटी को बढ़ाओ। विघ्न आया मतलब योग की कमी है, योग को बढ़ाओ। विघ्न आया अर्थात संकल्प शक्ति को पर काम करना अभी बाकी है। अगला प्रश्न, मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही है, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन डैश बनते हैं, सुपर ह्यूमन, वरदानी, रक्षक, सहयोगी। तो जो स्वयं निर्विघ्न है वो दूसरों को भी मदद करेगा, कैसे निर्विघ्न बने। अगला, मनन करना एक सेकेंड, यह सेकेंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए डैश रहना यह फर्स्ट स्टेज है। चाय की चुस्की में, निर्विकल्प अनुभव में, मगन में, मगन। अगला प्रश्न, मनन करने वाले सदा डैश में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। तो मनन करने वाले सदा डैश में बिजी रहने के कारण, सेवा में, ऑनलाइन, व्यर्थ, स्वचिंतन, स्वचिंतन। भगवान के वाक्य है या माया के वाक्य है, माया की मुरली, बाबा की मुरली, शिववाणी मायावाणी। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। राइट। जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। डैश अंतर्मुखी बनाता है, डैश वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो कौन अंतर्मुखी बनाता है? रावण अंतर्मुखी बनाता है, बाप वर्णन करने के विस्तार में लाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सुखी राम दुखी राम। ऑप्शन सी स्वदर्शन परदर्शन। ऑप्शन डी स्वचिंतन परचिंतन। तो स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है और परचिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। निरंतर दूसरों के ही विषय में सोच रहे हैं, सारा जीवन पीएचडी डिग्री ले रहे हैं, पर किस पर? दूसरों पर पीएचडी कर रहे हैं। अभी तीन ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन गलत है, वो कौन सा है वो बताना है। आज बाप दादा तीन प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। पहले लगन में मगन रहने वाले, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले, अनुभव में मगन रहने वाले। पहला लगन में रहने वाले। तो इस मुरली में बाबा ने तीन प्रकार के कौन से बच्चे देखे? वर्णन मनन और अनुभव में मगन। डबल रूप का यादगार देख रहे, संगम युग के रूप का यादगार डैश रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देवपद का यादगार देख रहे। संगम युग का यादगार ब्राह्मण फरिश्ता पूज्य भिन्न भिन्न। कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस भी होने चाहिए, भिन्न भिन्न। लास्ट क्वेश्चन, ये स्वमान है या देहाभिमान है ये बताना है। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो, इसलिए अंतिम जन तक आपका यादगार देख रहे हो। राइट रॉन्ग? स्वमान है या देहाभिमान? ये स्वमान है। तो ये हो गए आज के 10 प्रश्न। तीन मुरलियां बाकी है, दो बाकी है और 18 की बाकी है, और 18 तीन बाकी है और तीन बाकी है। तो कल तीनों एक साथ ले लेंगे। आज की कविता किसकी है? कविता में तीन चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, थोड़ा सा लय होना चाहिए, तुकबंदी राइम रिदम। चौथा, जेंडर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा नहीं आती, ब्रह्मा नहीं आती, शिव बाबा आती है, ब्रह्मा खाती है, ये जेंडर वाली मिस्टेक्स उसमें कम से कम हो, और कम से कम नहीं जीरो, और लास्ट थोड़ा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें हैं कविता की, और बहुत लंबी भी ना हो, छोटी हो। ओम शांति।
ओम शांति। टॉपिक है नेत्रों की नकारात्मकता। तो नेत्रों की ये नकारात्मकता, इसमें भी है विविधता। कभी आती है अच्छाई बनकर, कभी आती है घृणा और नफरत बनकर, कभी लेती है रूप दोष दृष्टि का, और कभी कभी कमजोरी देखने का। पर है यह सब प्रदर्शन और बाह्यमुखता का अनेक रूप माया के, आत्मा को गिराने का। ये सब है अनेक रूप माया के, आत्मा को गिराने का। अब संभालो आत्मन स्वयं को इस धोखे से। अब संभालो आत्मन स्वयं को इस धोखे से, क्योंकि मिला है वरदान तुम्हें प्रभु से, दिव्य दृष्टि और दिव्य नेत्र का इस जन्म में। शक्ति है सृष्टि को बदलने की जिसमें, तो कर प्रयोग इस उपहार को प्रतिपल जीवन में। अब करना है धरती को पावन, समाकर पवित्रता हर नजर में। देखो चैतन्य मस्तक मणि आत्मा जो विराजमान सभी में, इससे आती है समता, ममता और महानता व्यवहार में। रूहानी दृष्टि से हो जाते हैं अनेकों के दुख दूर, श्रेष्ठ भावना से कर पाओगे आत्माओं को भरपूर। होंगे प्रत्यक्ष बाप दादा जैसे इन आंखों में नूर, दिखेगा मार्ग भटके हुओं को पहुंचने का निर्वाण और बेगमपुर। ओम शांति।
शिष्य बिघडला सद्गुरुच्या झाला।